नमस्सिद्धेभ्यः ॐ नमस्सिद्धेभ्यः ॐ नमस्सिद्धेभ्यः नमस्त्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की वर्षों तक धन का आर्जन किया गया है, कीमती कीमती वस्तुओं का संकलन किया गया है। अब संकलन के प्रति उपेक्षा से भाव उभर आई है और उस पूरी संपदा को लेकर के अपने स्थान तक पहुंचना है। विदेश की यात्रा हुई थी, अब पुनः देश की ओर लौट रहा है। बीच में अपार जल राशि समुद्र पड़ता है और सारी संपदा को जहाज में भर दी गई है और वह जहाज की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। सब कुछ निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब जीवन में निर्धन होने का कोई सवाल नहीं उठेगा। वह आ रहा है, जहाज चलाने वाले जहाज चला रहे हैं रात दिन, और सेठ बैठा है उसके भीतर। आकस्मिक एक घटना हो जाती है कि तूफान बहुत जोरदार आ जाता है, इतनी तेजी के साथ वह आ जाता है तो जहाज को बीचों बीच में ही रोकने की आवश्यकता पड़े। और जहाज को रोकने के लिए जब कहा गया तो जहाज तो रोक देते हैं, क्योंकि पूरी संपदा से जहाज तो भरा हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। तूफान आया तो चला जाएगा, निकल जाएगा। तूफान थोड़ा सा निकल तो गया, लेकिन जो ही अब यात्रा पुनः चालू होने थी तो पुनः एक सूचना मिल जाती है, जहाज को जल्दी जल्दी हटाइए यहां से। मतलब यह है कि 5 मिनट के भीतर मतलब मत पूछिए और हटा दीजिए जल्दी जल्दी, हमारे कहने से हटा दीजिए, उत्तर देने में और गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी जल्दी हटाए, किस बाजू को हटाएं। अब वह कहता ठहरा ठहरो, देखता है कि 5 मिनट इस ओर हटा दीजिए, फिर 5 मिनट के उपरांत उस ओर और हटा दीजिए। ठीक है, 5 मिनट इस ओर हटा दिया गया, फिर बाद में उस ओर हटाना है, उस ओर हटा दिया, लेकिन बाद में वह कहता है कि और थोड़ा सरक जाइए, हटा तो दिया लेकिन और कुछ सरकना आवश्यक है। कितना सरका है, 50 कदम और, हाँ 50 कदम। फिर बाद में कहता है नहीं 25 कदम और चाहिए, जल्दी जल्दी हटा दीजिए। जब वह बिल्कुल ही पास आ गया पहाड़, तब ज्ञात हुआ कैसा पहाड़ था। वो सफेद ऐरावत हाथी के समान, इतना बड़ा पहाड़, और वह डूबा क्यों नहीं, क्या द्वीप है, कोई कोई स्थान बचा है, क्या कोई नीचे पाताल से कोई विद्या के माध्यम से ऊपर कुछ फेंका जा रहा है? हो क्या रहा है? जब देखा गया तो वह यदि आकर के पहाड़ टकराता जहाज को, तो जहाज के कितने टुकड़े होते पता नहीं पड़ जाता। तिल तिल करे देह के खंड, ये तो हो ही जाते हैं, लेकिन जहाज के कितने हो जाते हैं? खसखस के दाने इतने हो जाते हैं कि तिल के बराबर होते हैं, कितने हो जाते पता नहीं पड़ता। ये क्या है? पूछा गया, ये पहाड़ है, तैरने वाले पहाड़। तो गढ़े हुए जो पहाड़ हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते जितने कि तैरने वाले पहाड़। और वो पहाड़ का तैरते कैसे, किसने प्रशिक्षण दिया उन्हें? कम से कम जब हम तैरना सीखे तो डरते डरते सीखे थे। 20-25 किलोमीटर, किलो भी किलोग्राम भी नहीं था वजन शरीर का उसके लिए इतने। और ये बिल्कुल कितने पहाड़ के पहाड़ है, कितने वजनदार, और ये डूबता नहीं, और तैरने वालों को डुबोना चाहता है, ये कौन है? तो फिर मालूम पड़ा, जो तैरने के लिए सहायता पहुंचा देता है, जो तैरने के लिए सहायता पहुंचता है, पहुंचा देता है, सहयोग दे देता है, वही जब अकड़ जाता है, उसी को जब गुस्सा चढ़ जाता है, वही जब विवाह परिणाम को प्राप्त हो जाता है, तब वह खुद तो डूबता नहीं लेकिन दूसरे को डुबोना चाहता है। वह क्या है बंधुओं, क्या है वो? वह जलीय तत्व की विकृति। जो जल बहना जिसका स्वभाव है, और जो कोई भी उसमें गिर जा तो वह तैरना चाहे तो उसको वह मदद कर सकता है। नाम की शोभा पड़े नाम मझधार पार हो। भावना में आप लोग बोलते हैं ना कि निर्जरा तत्व जिसके पास है और आश्रव तत्व नहीं है, संवर तत्व आ गया है तो वह नाम नहीं डूबेगी। नाम की शोभा पानी में ही है, लेकिन यदि पानी नाव के भीतर आए तो शोभा नहीं। नाव में पानी नहीं होना चाहिए और पानी में नाव होना ही चाहिए, तभी तो पार हो। पानी इतना खतरनाक नहीं है और नाव में तो पानी नहीं आया था, फिर खतरा क्यों हुआ? नाव में पानी नहीं तो आया था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पानी के परिणाम कई प्रकार के हुआ करते हैं। और ऐसे परिणाम हो गया कि उस जल तत्व का जब घनीभूत परिणाम हो गया, जल तत्व का जब घनीभूत परिणाम हो गया तो वह ऐसा खतरनाक साबित हो गया कि बड़े बड़े जहाज को भी वह एक बार में डुबोता नहीं, उन्हें निकाल लो आप, ऐसा नहीं निकल सकेगा। रत्नाकर का माल रत्नाकर में जाना चाहिए, एक पाई नहीं मिलेगा, खाली हाथ लौटना भी मुश्किल होगा। और वह आकर के टकराता है तो छिन्न भिन्न हो जाता है, इसको बोलते हैं हिमखंड, सफेद छक, और कुछ नहीं, एक दाग संभव नहीं। आज तक हमने दागदार पदार्थों को देखे, लेकिन बेदाग यदि कोई है तो हिमखंड। जिधर से भी आप देख लीजिए, चेहरा ऐसा उभरा हुआ मिलेगा लेकिन ऐसा गहरा रहता है कि कोई किसी को आकर के टकरा दे तो फिर तो देखो। जल की विकृति इस प्रकार भी हो सकती है, आत्मा का जो स्वभाव है वह जल के समान तरल और मृदु और तैराक, तैरने में सुविधा जुटा देता है, किंतु जब वह राग द्वेष के वशभूत हो करके अपने आप की होश को भूल जाता है तो वह ऐसा घनीभूत पदार्थ बन जाता है कि वह खुद भी टक्कर खा जाता है और दूसरे को भी ऐसा टक्कर दे देता है तो वह उस चक्कर में आ जाएगा तो फिर कहना क्या, उसका माथा फूट फूट जाएगा, शेष कुछ भी बचने वाला नहीं है। इतना खतरनाक परिणाम हो सकता है एक जल का। संसारी प्राणी सूक्ष्मत्व गुण को खो चुका है और सरल स्वभाव को खो चुका है, मृदुपने को खो चुका है और ऐसी स्थिति में वह खुद भी बाधित होता है दूसरों से और दूसरों को भी बाधित कर देता है। यह घनापन इसके पास क्यों आया? पहाड़ बनकर के रह जाए एक स्थान पर तो फिर भी ठीक है, संकेत उधर से कॉर्नर ले ले, लेकिन जब पहाड़ी कॉर्नर लेने लग जाए तो फिर बचे कैसे? हम कब ले ले, कैसे ले ले, पता नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि वह पहाड़ कैसे आते हैं कि पानी के अग्रभाग पर थोड़े दिखते हैं, कहीं थोड़े बहुत होगा, लेकिन नीचे कहां से उसका रहता है संबंध पता नहीं पड़ता। अब हमें सोचना है, ज्ञान जब कठोर हो जाता है, मान का अर्थ ज्ञान भी है और मान का अर्थ कषाय भी है, और जिसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है तो उसको बोलते वर्धमान, लेकिन गतमान वो मान से रहित हैं और वर्धमान हैं, और हम अर्धमान भी नहीं है, हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ है। हम मान चाहते हैं, कौन मान चाहता है, वो बीच में कौन है, वो आत्मा मान चाहती है तो क्यों चाहते हैं? इसमें एक ही खूबी है कि ज्ञान के यह सब विकृति है, ज्ञान के ऊपर ही कषाय का प्रभाव पड़ता चला जा रहा है और उसका परिणाम ऐसा निकल गया, ज्ञान को जानना का काम छोड़ करके वह ज्ञान जो है एक धुन में लग जाता है कि मान सम्मान के चक्कर में लग जाता है। संसार के माध्यम से कभी भी मान उसे मिलने वाला नहीं है, संसार के द्वारा उस ज्ञान का उस मान का कभी सम्मान होने वाला नहीं है। अज्ञानी क्या जानता है मान सम्मान करना? मान सम्मान करना तो ज्ञानी का काम है, और अज्ञानी जो है अज्ञानी के द्वारा स्वागत चाहता है और ज्ञानी के द्वारा, इसलिए कि ज्ञानी तो उसको स्वागत करेंगे नहीं, और अज्ञानी बहकाव में आ जाएगा तो कर लेगा। बड़ा विचित्र है, इसकी भूख को अब कैसे मिटा है? लेकिन बात ऐसी है, मान सम्मान कभी मान मिलता जाता है, कभी अपमान हो जाता है, क्योंकि भीतर बैठा हुआ जो मान है वह इस प्रकार का खेल खेल जाता है। किसके पीछे संसार दौड़ रहा है? क्षण भंगुर के पीछे दौड़ रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसके पीछे दौड़ रहा है, जिसके द्वारा हित नहीं है उसके पीछे दौड़ रहा है, जहां पर अनंत स्वागत के लिए खड़ा है उसके पीछे तो वह जाता ही नहीं, उसके पास आता ही नहीं, उसको वह देखने का प्रयास ही नहीं करता। एक यहां पर कोई भी निराभिमान होकर के अपने आत्मा के स्वरूप को अचिंतन करने लग जाता है तो अनंत सिद्ध परमेश्वर उनकी ओर देखते हुए नजर आ जाते हैं और उस आत्मा के भीतर अनंत सिद्धों का झलकन प्रारंभ हो जाता है कि मैं उसी ग्रुप में जाकर के मिलूंगा, उसी कंपनी में जाकर के मैं मिलूंगा, उसी टीम में मैं जाकर के मिलूंगा। जो टीम कैसा है, तीन लोक में मान्य टीम है, वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ऐसा अस्तित्व इसकी दृष्टि के सामने आता ही नहीं। यह मान के वजह से ही उस हिमखंड का पूरा रूप देखने में नहीं आ रहा है। संसारी प्राणी नश्वर वस्तुओं के पीछे अपने आप के स्वभाव को भूल करके क्या चाह रहा है। तब सेठ ने देखा भीतर बैठे बैठे, क्योंकि झाज वाले तो इससे बहुत परिचित रहते ही हैं, लेकिन सेठ ने देखा, देखो ये थोड़ा भी टकरा जाता तो बरसों की कमाई तो ठीक है, लेकिन कमाने वाला का अस्तित्व भी पता नहीं पड़ेगा। ऐसा खतरा, ऐसा धोखा, ऐसी विषम स्थिति सोच करके वह ओहो तब कहता है, कितना कठिनतम है पाषाण जीवन हमारा, कितने पथिक ठोकर खा गए इससे, कितने रुके, कितने गिरे, कितने फिर गए पथ से विपरीत दिशा में, फिर क्या, कितने पग लौलुहान हो गए इससे, फिर कितने पग में घाव गहरे हो गए वे, उन घावों का उपचार हुआ कभी, हो कैसे सकता है उपचार, पापी पाषाण खंड से उपचार की बात, हे प्रभु उपचार तो दूर रहे लेकिन उपचार के भाव ही बार उभरे हैं, यह भी एक भाग्य की बात है। इसके आगे इसके पग नहीं उठ सकते, इसके पास इतनी हिम्मत है नहीं, हे प्रभु ये प्रार्थना स्वीकार हो, इस जीवन में नहीं सही, अगली पर्याय में तो मरहम बने, हे प्रभु यह प्रार्थना स्वीकार। कितना कठोरतम जीवन है हमारा, क्षणभंगुर मान सम्मान के लिए हमने अपने आप के जीवन को इतने कठोर बना दिए, और एक जीवन नहीं, दो जीवन नहीं, तीन जीवन नहीं, बार बार जीवन मिले, धिक्कार है संसार के मान के लिए, आज तक एक बार भी तो मान नहीं मिला, और मिला हुआ जो स्वभावभूत ज्ञान मान है वह भी कहां चौपट होता चला गया, एक अक्षर के अनंतवें भाग में वह मान की परिणति हो जाती है मानी व्यक्तियों की, और कभी उसमें हल्कापन आ जाता है तो वह तैरता तैरता कहां पर आ जाता है, निबोध के तल से ऊपर उठता 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 यहां पर आया है, और यहां से जल नहीं है, यहां से आकाश मंडल केवल है, विकास पतन से विकार विकास की ओर होता होता आया, मनुष्य जीवन में आने की उपरांत भी वह सारी की सारी पर्याय उस हिमकंड की भांति नीचे दबा रखी है और ऊपर देख रहा है कोई मान के लिए सम्मान के लिए आ रहा है क्या नहीं। मुझे वह मान सम्मान देता है तो ठीक है, नहीं तो उसको ऐसा टक्कर देऊंगा ताकि मुझे और उसको पाताल में भेजना है। अरे स्वयं भी तो जल में घुल मिल करके रहना छोड़ करके हिमकंड ने ये क्या सोचा तुमने, कितना कठिन तम है पाषाण जीवन तुम्हारा, कितने पथिक ठोकर खा गए इससे, कितने रुके कितने गिरे और कितने फिर गए पथ से विपरीत दिशा में, कितने पथ लौ लुहान हो गए कितने गहरे हो गए घावदार वे पथ, उपचार हुआ नहीं, न स्वयं का उपचार हुआ और न दूसरे के उपचार करने के भाव ही इसमें आए। धन्य है यह भी जीवन, भले ही वह पाषाण खंड के रूप में है लेकिन कम से कम उपचार के भाव तो मन में उभरे हैं। ये भी सौभाग्य की बात है कि हे भगवान एक बार प्रार्थना मंजूर करो, इस जीवन में नहीं सही अगली पर्याय में तो मरहम बने। अब कम से कम अपने को मरहम बनना है, पारस मरहम। एक पारस मलम है क्या, नहीं पारस मरहम है ना, हाँ। वो पैरों में जो कोई भी छाले आए, चोट लगे और कुछ भी हो, पारस मरहम जो है नीमच से चार निकलता है, नीमच कहां से निकलता पता नहीं है, वो लाल लाल मरहम रहती है, उसकी डिबिया भी बहुत बढ़िया रहती है, एडवर्टाइजमेंट कहना ही क्या। लेकिन उस मरहम को दुनिया के लिए चोटों को दूर करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम अपने कषायों के माध्यम से कितने व्यक्तियों के पैरों को, कितने व्यक्तियों के मुलायम दिल को हम कठोर बना देते, चोट पहुंचा देते हैं। वो दिल ही जानते होंगे कि वह मरहम नहीं चाहिए हमें, कम से कम लठ मार नहीं हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्या जीवन बना है, कैसा जीवन बना है, ये मत समझो जो कहने वाला कुछ और आगे कह रहा है, कुछ नहीं वो भी इसी परिधि में इर्द गिर्द ही कह रहा है क्योंकि कहने वाला भी उसी ग्रुप का है, लेकिन बात ऐसी है, एक पागलपन की बात है। हम मृदुता की बात करते हैं, हम रजता की बात करते हैं, हम निर्विमानता की बात करते हैं, लेकिन बीच बीच में वह बोलता रहता है, देखो ज्यादा मुझे नीचे हटा दिया गया, पीछे हटा दिया गया तो हम हड़ताल कर देंगे, और ऐसे ऐसे भी वो हड़ताल कर जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत ही ऊंचा उठ गया हो तो पुनः एक बार नीचे और आना पड़ता, कुछ उत्साह के साथ, कुछ विशुद्धियों के साथ, कुछ परिणामों में उज्ज्वलता ला करके यदि ऊपर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वह ऊपर की पहुंच जो है लहरों के साथ गई है, जो ही लहरों के ऊपर जिस समय नाव पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि कहीं नाव तैर नहीं रहे, नाव जो उड़ रही है, लेकिन वह नाव में उड़ने की जो क्षमता आ गई है वह अपनी नहीं आई किंतु लहरों के माध्यम से आई है। उसी प्रकार कर्म कभी कभी उपशमित जैसा, मंद जैसा, क्षीण भाव जैसा हो जाता है, मान कुछ दबने जैसा हो जाता है तो ऐसा लग जाता कि हम तो बिल्कुल निराभिमानी वर्धमान की बस पहुंच ही रहे, लेकिन जो ही वह लहर और नीचे आ जाती है तो समझ में आ जाता हम तो जमीन पर खड़े हैं और वे हैं आसमान पर, वे वर्धमान हैं, उनके स्वागत के लिए हमें यहीं पर खड़ा होना पड़ता है, उनके पास जाकर के हम कभी भी उनका स्वागत, उनका मान सम्मान कर नहीं सकते, हमें तो उन्हें यूं ही देखना पड़ता है और गर्दन के पास इतनी क्षमता कहां है, उन्हें ऐसे ही देखते रह जाए। बार बार मन में उठ जाता है कि ऐसा कौन सा अपराध इस संसारी प्राणी ने किया और करता जा रहा क्षण क्षण पल पल अपने स्वभाव को भूल करके। एक बार इस जीवन में नहीं सही, मर हम बने, ऐसे मुलायम बने, ऐसे मुलायम बने, फिर कठोरता हमारे पास आवे ही। लेकिन बात ऐसी है, जीव कह रही है, रसना कह रही है, रसना के पास न आंख है, न दांत है, न हड्डी है और कुछ भी नहीं है, ये मूर्ति रहती है बार बार। रसना बहुत मृदु है, रसना बहुत मृदु है, लेकिन शब्द ऐसे निकालती है, ऐसे निकालती है सामने वाले के दांत टूट जाए। रसना के ऊपर वह हलवा फिसल जाता है, इतनी मुलायम है ये। रसना के ऊपर आज तक किसी ने ठोकर नहीं खाया, लेकिन ऐसे ऐसे रसना के माध्यम से ठोकर मिल जाते हैं कि वह जीवन पर्यंत मूंदी चोट जिसको आप लोग बोलते हैं वह खाता रहता है और उसका अनुभव करता रहता है। ऐसे इसके पास शक्ति है कि ये कहां से आ गए इसके पास, भावों की परिणत वह मान प्रति समय बंध को प्राप्त हो रहा है। जिस मान को आप अपने को जीतना है, जिस मान को हमें जीतना है, वह मान प्रतिपल बंध को प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा 9वें गुणस्थान तक। थोड़ी फिसल जाएगी तो ऐसे ऐसे भयानक मान की चट्टाने सामने आ सकती हैं कि भगवान के सामने भी वह नहीं। वर्तमान जिन्हें समोचरण की रचना प्राप्त हो गई और केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है और चारों ओर धुंध भी बज रहे हैं, सबको छू रहा है, असंख्या देव अवतरित हो गए आए हैं समोचरण में, किंतु एक शिष्य की कमी। और वो कौन से शिष्य, और वो कौन से शिष्य, इंद्रभूति होना चाहिए, और इंद्रभूति की गर्दन में साइटिका हो चुकी है, वह मुड़ती नहीं, वह ऐसी जबरदस्त है कि मेरे सामने कोई भी है ही नहीं। नो, कोई नहीं, आई एम ओनली, मैं ही हूं, वह भी है। संभव नहीं, हो कैसे सकता है, मेरे सामने नहीं, पीछे संभव, नीचे संभव, आजू बाजू संभव, लेकिन सामने अब इन दोनों का मेल कैसे, कैसे, कौन मुड़े, वो भी ऊपर अड़ गए, हम नीचे नहीं उतरेंगे, और ये कहते हम नहीं जाएंगे किसी के पास। वाह भाई वाह, वो भी मान का तमाशा, अब ये भी मान का तमाशा, वो भी मानी है और ये भी मानी है, दुनिया कह रही है कि भाई एक तो मान लो, इंद्र इसके पीछे तो है, समस्या में उलझ गया, अब किसके पास चले जाए, वर्धमान को कुछ कह नहीं सकते और इनके सामने जा नहीं सकते, कुछ न कुछ तो चाहिए, फिर मानी व्यक्तियों को मनाने के लिए माया की शरण जाना आवश्यक है। सोचा इंद्र ने कि भैया माया के बिना यह काम संभव नहीं है, एक बार तो कर ही लो माया के माध्यम से। फिर उन्होंने सोचा, रूप बदल दिया और जाकर के एकाध श्लोक दे दिया, इसका क्या अर्थ होता है, तो ये किसने दिया किसके, हम तो वहां से आए हैं और अर्थ हमें समझ में नहीं आया, और आपके अलावा यहाँ पर इतना ज्ञानी कौन है, संभव ही नहीं, इसलिए मैंने आपके पास रख दिया, आप जानो। ये कौन से हैं, वो हमारे गुरु ने दिया, वो वहां पर है, कौन से गुरु होते हो, तो वो ही तो देखना है अपने को, क्या करना है, यार समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे चलो वहीं पर कौन से आ गए गुरु। कोई गारुड़िया होगा, ऊपर चढ़ करके बैठ गया, सब लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने का अच्छा तरीका है अपना है तुम्हारे गुरु ने, अच्छा तरीका है, चमका रहे हो। और जो ही वहां पर मानस स्तंभ का दर्शन हुआ और भीतर का जो ज्ञान मान रूपी ज्ञान पर आरूढ़ था बस नीचे उतर गया, ऐसा उतर गया, ऐसा उतर गया, बस तर ही गया, तर ही गया। आप अकेलो अवतरे, अब मरे अकेलो हो, अब तरे हो, बिल्कुल तर गया गया। कहता है कितना कठिनतम पाषाण खंड जीवन है हमारा। अब पाषाण खंड नहीं रहा, अब तो इसमें बहुत कुछ रौनक था, बहुत कुछ समझदारी आ गई। पाषाण भी बहुत मुलायम होते हैं, पाषाण भी मुलायम होते हैं, अरे भैया हीरे को भी अगर कुछ मिल जाए पुट किसी का, उसमें भी अनेक पहलू निकलते हैं। पाषाण खंड के ऊपर पहलू नहीं, कठोरतम कठोरतम हीरे के ऊपर भी पहलू निकाले जा सकते हैं, और उन पहलुओं में दर्पण के समान अपने मुख को देख सकते हैं, लेकिन उसकी एक विधि अलग है। उसकी कठोरता को छांटना और उसमें मुलायमपन लाने की कई विधियां हैं। तो ज्ञान वहां पर जाकर के नतमस्तक हुआ, और सुबह जो कहा था ज्ञानावरण कर्म पांच ही होते हैं, आठ नहीं होते हैं, और जो उल्टा था वह पलटा था और सुलटा हो गया, बस ज्ञान जो था वह सुलटा हो और सब देखते रह गए, और प्रथम शिष्य बन गया। महावीर ने बनाया, महावीर को बनाना होता तो 66 दिन रुकते नहीं वो, महावीर को बनाना होता तो 66 दिन रुकते नहीं, लेकिन महावीर को बनाना नहीं, इंद्रभूति को बनना था, और इसकी आंखें जब खुले तब, अब आप जो आंख बंद करके रहो बैठो और सूर्य का उदय हुआ क्या नहीं, उदय हुआ क्या नहीं, कुछ दिखता तो ही नहीं, क्योंकि आंख के भीतर आ जाए कि सूर्य कैसे आ, वस्तु तत्व इतनी ही मर्यादा में ढका हुआ है। एक बार एक मुहार पढ़ लिया, तिल की ओट में पहाड़, यही है ना, तो क्या मतलब हुआ इसका, तिल तो इतना सा और पहाड़ इतना बड़ा, इसकी वोट ये कैसे, कुछ समझ में, पहाड़ की वोट में तिल कह दो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये कैसे, कोई विपरीत ज्ञान तो नहीं हुआ तो मुहारा बनाते समय, तिल की वोट में कैसे पहाड़, पहाड़ की वोट में तो तिल ठीक है, लेकिन बात ऐसी है तिल की वोट में ही पहाड़। हम यदि आंखों के सामने यदि तिल को रख ले, जहां पर वह तिल है ना गोलक काली काली, उसके ऊपर एक तिल रख लो, कोई भी तिल रख लो, सफेद तिल रख लो या काला तिल रख लो, कोई भी रख लो, बस सामने का पहाड़ भी मधुबन जो पार्श्वनाथ हिल 8,000 फीट वाला, वो भी सब समाप्त। मतलब ये हुआ हम आंख खोले तो दिखे वस्तु तत्व, वस्तु तत्व बहुत बड़ा है लेकिन खोलना चाहिए। मान को यदि हम समाप्त कर देते हैं, केवल ज्ञान होने में देर नहीं, कषाय को हम रखे अपने पास और निष्कषाय की बात करें वह भी शोभा नहीं देती। दिनों दिन ऐसा होता जा रहा है, परिणामों में ऐसी धारणा बनती जा रही है। अब बोलने का काम बिल्कुल कम होना चाहिए। कुछ ऐसी दुकान होती है जहां पर दुकानदार बहुत बोलते हैं, कुछ ऐसी दुकान होती है बोली बीली कुछ है ही नहीं, विदेश में बोले होते हैं। जो वस्तु खरीदना है वो वस्तु सारे सारे जो वहां पर रखी गई है और उसके ऊपर भाव है, लिखा हुआ दाम उतना पटक दो और चले जाओ। इसी प्रकार अब हमें भी करना है, ज्यादा बोलने से कोई कीमत बढ़ने वाला तो नहीं, और ज्यादा कीमत बता करके नीचे आने से और वस्तु तत्व का मूल्य कम हो जाए। आप लोगों को आदत पड़ चुकी है, दुकानदार के पास कोई ग्राहक गया, ग्राहक को देखते ही वह भी समझता है और ये भी समझता, दुकान को समझ करके ये भी गया, हम एक धोती जोड़ा निकाल दो, ठीक ठीक कौन सी चाहिए, हाँ फलाना फलाना चाहिए, अच्छा ठीक निकाल, क्या कीमत, क्या कीमत, आजकल तो क्या बताएं, नहीं समझे, हाँ सब में 10-10 गुना होता जा रहा है, वस्तु तत्व में तो 6 गुनी वृद्धि होती है, नहीं समझे, और 6 गुनी हानि होती है, लेकिन बाजार के भाव तो 10-10 गुनी, 20-20 गुनी, 100-100 गुनी, 1000-1000 गुनी, इस प्रकार उथल पुथल हो रहा है भैया। हम तो ये की बात कह देते हैं क्या है कीमत, वो कह देता है 100 रुपए जोड़ा, हाँ क्या कहा, सामने वाले ग्राहक भी बहुत होता है, क्या कहा क्या कहा, सो करके कह रहे हो क्या, नहीं 100 रुपए जोड़ा कहा, 100 रुपए जोड़ा, हाँ यदि धोती की जोड़ों की कीमत हो गई तो क्या हमारे दाम की कीमत ज्यादा नहीं हुई, ध्यान रखो 100 की बात कह रहे हो, कहीं नींद तो नहीं लगी, हम 10 देते हैं, ये कि तो बिजली कमी हो गई है, हम 10 रुपए दे देते हैं, देना हो तो ले लो, नहीं तो भैया चलो दूसरी दुकान चलो, तो फिर अब वो है ग्राहक भी ऊपर की जेब में ही रखता अपना मसाला, बोले भैया नोट दिख रहे हरे हरे दिख रहे नोट, तो ग्राहक चला जाएगा तो वहां पर ले लेगा, क्या करें 50 दे दो, 50 एकदम 50 रेट भाव उतर गया बाजार का, माल तो वही है और 50 कैसे उतर गया, नहीं नहीं अभी अभी फोन आया है कि दे सकते हैं आप 50 में, लेकिन 50 से कम नहीं करना, अभी भी फोन उतरा है, अच्छा 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 ठीक ठीक है, हम ऐसा करें कि 10 मिनट और बैठ जाऊंगा ताकि और दूसरा फोन और आ जाए तो और अच्छा, हम 12 रुपए देते हैं ज्यादा ज्यादा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 25 कर लो 25, नहीं 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 12.5 भी नहीं है, नहीं नहीं कोई कर लो 15, नहीं जो 12.25 कर देते हैं, कोई बात नहीं है भैया 13 तो कर लो, 13 ही है, ले जाओ, अच्छी बात है, वो ले लेता 13 में, क्या हो गया, ये वस्तु तत्व का मूल्य घट जाता है, 100 रुपए कह करके 13 में बेचने की अपेक्षा 13 पहले कह दो और वहां पर बैठो नहीं, और ग्राहक को कह दो 5 मिनट से ज्यादा यहां पर ना बैठे, एक ही भाव है और वस्तु का भाव एक ही होता है, समय खोना, नौकरों को रखना, सेल्स फलाना, वो ये कुछ भी नहीं, अब कोई भी आ जाता है क्या, देख लो इनकम टैक्स ऑफिसर बोला फलाना बोला, कोई क्या आएगा, वो 100 का 200 में बेचने से वो आएंगे, नहीं समझे, 100 को यदि 200 में बेचेंगे तब तो आएंगे, नहीं आएंगे तो बता दूंगी ये ले लो, कोई चाय तो पिला दो, क्या चाय पिला दो, वहां पर होटल है, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 100 रुपए इस प्रकार ले लेता है, उसके लिए चाय भी, नाश्ता भी, फलाना फलाना हो जाता। सारे के सारे कषायों का बाजार है। आप एक भाव रखिए, ज्ञान को ज्ञान के रूप में आंकिए। ज्ञान के द्वारा दूसरा काम करना गलत है। उपयोग का उपयोग करिए, आप दुरुपयोग न करिए। उपयोग का उपयोग करना ही सदुपयोग है, नहीं तो वह दुरुपयोग है। और संसार का यह रिकॉर्ड है, आज तक इसने ज्ञान का सही उपयोग किया ही नहीं। अपने अस्तित्व को जिसने सही सही पहचान लिया, क्या वह उसका दुरुपयोग कर सकता है? नित्यावस्था निरूपाणि, द्रव्य नित्य है और अवस्थित है, उसके गुण नित्य हैं और अवस्थित हैं। जितने गुण हैं उतने गुण रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं घटेंगे नहीं, जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे। तो यह लक्षण जब बांध दिया गया है तो उसका दुरुपयोग करना यही तो कषाय है। सही सही वस्तु का उपयोग करने वाला ज्ञानी हुआ करता है, और उसका सही उपयोग भूल जाना ही अज्ञानी का नाम पता अज्ञानी। इसलिए हमें मान किसके ऊपर करना है, मान ही करना। मान करो तो ऐसा मान करो कि दूसरे की ओर देखो ही नहीं। है ऐसा कोई है? अरे दूसरे के द्वारा तो वाह वाह चाहते हैं, लेकिन दूसरे का मान नहीं करना चाहते हैं। तो अर्थ ये हुआ, न इसको मान मिलेगा न ही अपना केवल ज्ञान मिलेगा। यदि केवल ज्ञान चाहते हो तो दूसरे को भूल जाओ। भूलना भी एक प्रकार से उसको नहीं मानना है ना। एक तो तिरस्कार करना और एक आवश्यक नहीं समझना, इसमें बहुत अंतर है। यदि दूसरे से नमस्कार चाहते हो तो उसके तिरस्कार मत करिए। नहीं, हम 3 लोग के द्वारा नमस्कार के चाहते हैं तो 3 लोग के ऊपर देखो ही नहीं। केवल ज्ञान होने में 1 सेकंड नहीं लगता। ज्ञान यदि पदार्थों की ओर जा रहा है तो गलत काम कर गया, और ज्ञान यदि पदार्थ की ओर नहीं जाएगा तो जितने पदार्थ हैं वो सारे के सारे ज्ञान में उतर आएंगे। इसी का नाम केवल ज्ञान। लेकिन इतना तटस्थ होना, इतना मध्यस्थ होना, इतने अपनी वस्तु को मान देना खेल नहीं, बहुत बड़ा काम है। बल्कि ये कहना चाहिए यही एकमात्र शेष काम है, बाकी सब अनंतों बार कर चुके हैं। या तो दुनिया को समता की दृष्टि से देखिए, या तो देखिए मत। कोई भी बड़ा छोटा नहीं, समान है। यदि इस प्रकार समता आ जाती है तो आपकी बलिहार है। यदि नहीं आ पाते, इसमें गड़बड़ हो जाता तो आप अपने आप में बहरे रहिए ना, क्या बात हो गई। कोई एक गरीब था, कोई एक शेर अमीर था। अमीर ने दबाने का प्रयास किया गरीब को। गरीब कहता हाथ जोड़ करके, शेर जी आप अपने घर में होंगे, हम अपनी कुटिया में, शेर नहीं श्रीमंत हैं, मुंदेलखंड नहीं आप सेठ जी और श्रीमंत, हम क्या कम है, हम अपने घर में। जब हम चाहें आपके घर पर आए तो उस समय आप अपने सेठ पना दिखाओ। ये तो गवर्नमेंट का रोड है, ध्यान रखना बड़ा। तो यह स्वाभिमान, यह निराभिमान, अपने घर में रहिए, कोई मतलब नहीं। सबसे ज्यादा यह कठिन काम है संसारी जीव के लिए। इसलिए ये कार्य नहीं हुआ इसके द्वारा आज तक। आंग्ल कवि ने लिखा, भाव में आपके सामने रखना चाहूंगा, अपने मित्र मंडली को छोड़ सकता है, अपनी संपदा को भी छोड़ सकता है, अपने सब कुछ छोड़ सकता है, विषय कशा विलासता सब कुछ छोड़ सकता है, विदेश जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, शरीर के प्रति भी निरीह हो सकता है, लेकिन इसके बाद एक घाटी है उस साधक के लिए, उस घाटी में प्राय करके ब्रेकडाउन हो जाती है। वह क्या है? इट इज लास्ट वीकनेस ऑफ सेंट कहो या साधक कोई भी कहो, बिहाइंड गोइंग टू रेपिटेशन। ख्याति पूजा कीर्ति के पीछे भागना यह साधक की अंतिम कमजोरी है। इस कमजोरी के उपरांत कोई बलजोरी है ही नहीं। बलजोरी बलजोरी है फिर तो सीमा यहीं पर है, और यहां तक आकर के भी बहुत फेल हो जाता है, इसलिए यही एकमात्र घाटी है। इस घाटी में सारे के सारे ब्रेकडाउन हो जाते हैं और गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पुनः उठना बहुत कठिन हो जाता है। निंदा करे स्तुति करे तरवार मारे क्या आरती मणिमयी सहसा उतारे, साधु तथापि मन में समभाव धारे, वैरी सहोदर जिने इकसार सारे। ये शाम के शाम कोई निंदा हो, कोई स्तुति हो, कोई आरती उतारे, कोई मारे, कुछ भी हो, स्मशान हो, भवन हो, वन हो, खूब मतलब जिसको हमने छोड़ दिया पर जान करके, पर मान करके, फिर उसकी ओर हमारी दृष्टि जाती है तो दृष्टि में अभी और कसर है, बल्कि कसर ही नहीं है, केसर है कि इतनी कमी है कि उसने कुछ निकाला ही नहीं। सही तो दृष्टि का कचरा यही है, विलोम स्थिति। एक बार धारणा बन गई तो फिर वह धारणा गुम क्यों हो गई? कमजोर धारणा जो मानी गई है वो बहुत खतरनाक है। दृष्टि की ही दृढ़ता होती है, दृष्टि की दृढ़ता के ऊपर ही आचरण में दृढ़ता आती है कि एकांत नहीं है, लेकिन दृष्टि में यदि चला चलपन है तो नियम से वह जल्दी जल्दी चल नहीं सकता। रफ्तार गाड़ी पकड़ने के लिए दृष्टि की निष्पंदता परम अनिवार्य है, इसलिए चश्मा वगैरह लगा लेते हैं कि पलक भी मारना न पड़े, और होता ऐसे ही है क्योंकि 80 मील रफ्तार से यदि कोई गाड़ी चला रहा हो, एक पलक मारते ही कितनी गाड़ी आगे चली जाती जाती है ना, और एक कभी पलक मर जाए तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक आध फरलांग दो फरलांग तो चली जाते हैं, एक आध पलक मारते ही, तो बहुत कठिन है। जब वस्तु तत्व ही इतना तेज रफ्तार से घूम रहा है और उस समय हम थोड़े बहुत पलक मार करके दूसरे की ओर देख लें तो कितने पीछे रह जाएंगे, गिनना में मामला गड़बड़ हो जाता है। नाप तोल करते रहते ना आप लोग दुकान में हैं? आज तो बिल्कुल तराजू तराजू आ गए, पहले नाप भी करते थे कोई नाप नाप के माध्यम से, तो क्या करते थे वो, एक 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 दो 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 तीन 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 ऐसे क्यों करते थे? इसलिए करते कहीं भूल न जा नहीं समझे। और सामने वाले ये भी मान लो इधर उधर देख रहा है तो दो 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 चार 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 ये भी हो जाता है। तो आप देखो वस्तु तत्व को देखना चाहते हो, ज्ञान यदि अन्य कोई लोभ की ओर चला जाएगा तो उसका क्या होगा, दशा क्या होगी, मुनाफा होगा नहीं होगा। बंधुओं ज्ञान को मान माया लोभ की ओर क्रोध की ओर ले जाओगे दशा हमारी बहुत तट फेल इसलिए हो रही। आने वाले को इतना मिल रहा अवसर मिल रहा है कि वो कैसे भी करे आप कैसे भी चले। सावधान रहिए और मानी कभी भी सावधान होने सकता। अवधान का अर्थ क्या होता है, अवधान का अर्थ क्या होता है, यही तो है। ज्ञान का ही अर्थ सावधान है, लेकिन ज्ञान का अर्थ सावधान नहीं होता। ज्ञान की स्थिरता का, ज्ञान की अप्रमत्त दशा का नाम सावधान है। अवधान, अवधान का अर्थ ज्ञान की ज्ञान की धारणा, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की एक प्रकार से जागृति है। ज्ञान सोया हुआ ज्ञान भी रहता है और निगोदी अवस्था में गया है तो कितना सोया है, कितना सोया, बहुत सो गया है, लेकिन खोता तो नहीं, लेकिन अवधान उसके पास नहीं है। तो ज्ञान को जागृत रखोगे तो आपकी अवधान की मात्रा अनुपात बढ़ता चला जाएगा, और जितनी आपके अवधान की मात्रा बढ़ती चली जाएगी उतनी आप केवल ज्ञान के निकट पहुंच जाओगे। एक बार लेख पढ़ा था, कोई शतावधान होता है, कोई 50 अवधान होता है, कोई 70 अवधान वाला होता है, कोई 200 अवधान वाला होता है। उसका मतलब क्या, मतलब यह है कि ज्ञान की स्थिरता का, ज्ञान की स्थिरता यह बात कह रही है कि इसके पास अवधान अर्थात धारण करने की कितनी क्षमता है। वही भी वही वस्तु है लेकिन धारण करने की क्षमता का अभाव होती चलता है। पटरी वही है, रेल की पटरी वही है, लेकिन पटरी के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती गाड़ी को, रेल को, जिस समय जितने रफ्तार से वह गाड़ी जाएगी उस समय उस पटरी में क्या हलचली मच जाती है। आप लोगों की पटरी ऐसी है 2 किलोमीटर रफ्तार से भी यूं फेल हो जाती है। ऐसी ऐसी भी पटरियां निकली हैं अभी 400-400 किलोमीटर रफ्तार से 1 घंटे में गाड़ी जाती है। पटरी कैसी, कितनी मजबूत होगी, आजू बाजू के स्थान को कितने सीमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उन्होंने बहुत, और विश्वास के साथ गाड़ी को छोड़ देते हैं और उसमें मालू माल भर करके छोड़ देते हैं, मालदार व्यक्ति भी बैठ जाते हैं विश्वास के साथ यह पटरी कभी भी खिसकेगी नहीं। आप लोगों के अवधान क्या बताए हैं कि ये एक अवधान भी हमें नहीं, शतावधान तो बहुत दूर है, शैतान हुआ है हमारा ज्ञान, शतावधान कैसे बनेगा। इधर उधर चंचलता इसकी है, मान के वजह से ज्ञान की चंचलता आती चली जा रही है, मान के वजह से ज्ञान का मूल्य कम होता चला जा रहा है, मान के वजह से हमारा ध्रुव बिल्कुल खिसकता चला जा रहा, मान के वजह से हमारा पतन होता चला जा रहा, मान के वजह से हम दूसरों की दृष्टि में कठोर बने हुए हैं। हम मृदुता चाहना चाहेंगे तो मान का अवसान अनिवार्य है। अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूं, 4 बजने को थोड़ा सा बच गया है। मंदिर की बात, और कपूरा में मंदिर कितने हैं, है? हाँ, उसी की बात हम कर रहे हैं। प्रभु के विभु त्रिभुवन के निकट जाना चाहते हो तुम, प्रभु के विभु त्रिभुवन के निकट जाना चाहते हो तुम, वहां पर जाने के लिए टिकट चाहते हो तुम, वहां जाना बहुत विकट है, वहां जाना बहुत विकट है। मानापमान का अवसान अनिवार्य है सर्वप्रथम, मानापमान का अवसान अनिवार्य है सर्वप्रथम, उस मंदिर में विराजमान है भगवान, उस मंदिर में विराजमान है भगवान, जिस मंदिर का चूल शिखर गगन को चूम रहा है, जिस मंदिर का चूल शिखर गगन को चूम रहा है, और जिस मंदिर का प्रवेश द्वार धरती सूंघ रहा है, वहां जाना बहुत विकट है। समझ में आ गया आप लोगों को? महाराज कुछ समझ में नहीं आया और कुछ समझा? समझाने का अर्थ यह है, इस शिखर को देख लीजिए आप कितने ऊंचे हैं। टोपी हो तो टोपी गिर जाए, साफा हो तो साफा गिर जाए, यदि बांध रखा हो तो खुद स्वयं गिर जाए। शिखर की बात है ये, इतना बड़ा तो शिखर है मंदिर का। चलो भगवान के पास जल्दी जल्दी चलो। तो वहां पर कह देते हैं, ओ से खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ, पहले सामने के हाथ देख लो क्या है। प्रवेश द्वार धरती सूंघ रहा है। हाँ, तुम सेठ होंगे, वहां पर होंगे, टीकमगढ़ में, सागर में, और जबलपुर में, ललितपुर में, वहां पर होंगे। यहाँ पर दरवाजा बड़े नहीं है, क्योंकि दरवाजा बड़े बनाना चाहते थे लेकिन पैसे कम पड़ गए, और शिखर में पूरा का पूरा पैसा खर्च कर चुके हैं, और हम ये बड़े भी बनाना नहीं चाहते हैं। बड़ों को झुकाने के लिए यहां पर प्रशिक्षण दे देते हैं, ताकि उनकी रीढ़ भी थोड़ी मुड़ जाए। दो काम हो जाते हैं अस्पताल में, जहां काम नहीं होता वहां पर एक ही बार में काम हो जाता है कि झुक करके आइए, पहले रुकिए, फिर बाद में झुकिए, फिर बाद में खड़े हो जाइए, फिर लीन हो जाइए, कि फिर लौटने की इच्छा नहीं हो। इसीलिए मंदिरों के दरवाजा बिल्कुल छोटा रखे, लेकिन जमाना आज इनलार्जमेंट। हमने कहा भैया सबको तो इनलार्ज करो, लेकिन और कोई भी शॉर्ट हैंड हो तो बना दो, ताकि ये लोग खिसक करके नहीं बिल्कुल बैठ करके चले जाए, फिर बाद में मन पहुंचा। मान को समाप्त करने का एक बहुत अच्छा कि बहुत सारे हमने शिखर देख लिए, बहुत सारे मंदिर हमने देख लिए, एक साथ सामूहिक रूप से इतने शिखरदार मंदिर केवल पपोरा की देन थी। लेकिन पपोरा के आसपास रहने वाले, हाँ हमारी देन है ये, ऐसा मत कहिए, इससे पाठ लीजिए कि इनको कैसे बनाए और कितने। कोई नाम है यहां पर? एक एक शिखर के जीर्णोद्धार के लिए आज 50-50 हजार रुपए भी निकाल दिया जाए तो भी वह उतनी मजबूती नहीं आ सकती। और अभी ऐसे मंदिर हैं जहां पर अभी जीर्णोद्धार की कोई आवश्यकता नहीं जैसी है, ऐसे हो करके भी आज तक उसके ऊपर किसी का भी नामांकन नहीं है। अरे नाम यह मान का प्रतीक, मान को घटाने के लिए और अन्यत्र कोई स्थान नहीं था, भगवान के पास आकर के उनकी सेवा चाकरी करके हम मिटा रहे हैं मान को, फिर इसके उपरांत नाम क्या? नाम तो हमारा आत्म राम है, लिखिए वहां पर। लेकिन आत्म राम का महत्व इतना इसलिए नहीं है कि वहां पर परमात्म बैठे हैं, इसलिए आत्म राम का कोई नहीं। आत्म बहिरात्म कोष
हेय जानी तज अंतर आत्म पूजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे।
कैसे हैं परमात्मा हमारे अपने आत्मा के आनंद में लीन हो चुके हैं। परमात्मा का ध्यान करो अंतरात्मा होकर, किंतु बहिरात्मा को तिलांजलि जलांजलि दे दो। यह नाम बहिरात्मा की ओर ले जाने वाला है। नाम का अवसान उस परमात्मा के मंदिर में अंतर में प्रविष्ट करने के लिए कारण है। फिर वहां पर क्या दिखता है? टीकमगढ़ समाप्त, ललितपुर समाप्त, जबलपुर समाप्त, सागर समाप्त, बाहर क्या है पता नहीं, भीतर जाने के ऊपर उपरांत वहां पर भगवान के और भक्त के अलावा कुछ रहता ही नहीं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पर बैठ करके घंटों तक सामाय किया जा तो विस्पेट ही नहीं भरता। लेकिन जो कोई व्यक्ति पेट भर खा करके भीतर जाएगा तो शयन करेगा, ये भी बात है। क्योंकि एयर कंडीशन वो बिल्कुल मंदिर है, गर्मी के दिन में लू नहीं लगती और सर्दी के दिन में सर्दी ठंडी नहीं लगती। ऐसे वातानुकूल है, ऐसे वातानुकूल है कि भगवान से वार्ता होती वहां पर। केवल इंटरेस्ट चाहिए भीतर जाने के उपरांत घंटों घंटों तक मान का अवसान हो जाता है, प्रभु का दर्शन हो जाता है, अपने आप को धन्य मानने लग जाता है। वक्त हे भगवान आप धन्य हैं, आपका जीवन कितना मुलायम और कितना नाजुक और कितना तांच सोने के समान है। ओहो हमारे पास क्या, केवल छोड़ने के लिए आपके पास हमारे पास कषाय के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको हम किस वस्तुओं को देखने की खुश कर सकते हैं भगवान? आप हमारे वस्तुओं से खुश नहीं होंगे, हमारे वस्तुओं के विमोचन से आप अवश्य खुश होते हैं, लेकिन आपके समान हम कषाय को छोड़ने के लिए कमजोर पाते। आप तो बहुत ही बलवान, कषाय को छोड़ना ही सही मायने में सही पुरुषार्थ है। कि देखो कितना वह विपरीत दशा का अनुभव कर रहा था इंद्रभूति, किंतु उसने जो ही ये देख लिया बस उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। पहले प्रभु का दर्शन किया, मानसम का दर्शन हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ, उपदेश गंधर्व परमेश्वर ने नहीं सुना और सारे बातें उन्होंने सुन ली। सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बहुत कुछ सुन करके रख रखा था, वो उल्टा हो गया था, उसको पलटा दिया। भगवान हम ठीक हैं, आपके चरणों में आ गए हम ठीक हैं, हमारा जो है सब कुछ अब निस्तार हो जाए। और बाद में दिव्य ध्वनि फिरी है भगवान, पहले शिक्षा नहीं, पहले दीक्षा। दीक्षा का क्या? संकल्प, कषाय का विमोचन, फिर भीतर से अपने आप ही केवल ज्ञान होने में देरी नहीं, मन परे ज्ञान होने में देर लगा कुछ नहीं लगा, मान खिसक गया मन परे ज्ञान आ गया और डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ वर्तमान को गौतम स्वामी परम शिष्य, परम शिष्य। एक कहावत कहकर के मैं छोड़ देता कि बुंदेलखंड में आप लोग रहते हैं, डांट लगाना आप जानते हैं, डांट लगाना है? तो क्योंकि मेन मेरा कहने का आशय डांट के ऊपर है। शिष्य और शिष्य को, शिष्य और शिष्य को यदि डांट नहीं लगाते तो काम समाप्त, और शिष्य और शिष्य को डांट लगाते हैं तो जो काम आप चाहते हैं उससे 100 गुना और। अब मतलब क्या? मतलब तो ये है, दवाई ले आए हैं या और कोई कीमती वस्तु ले आए हैं, तरल है और उसको शीशी में डाल दी गई और उसको रख दे, थोड़े से धक्का लग गया, शीशी गुड़क गई, शीशी के साथ भीतर की
दवाई या कीमती वस्तु बाहर आ गई, धूल में मिल गए। अब शिष्य को लेकर गया, क्या करना? अब शिष्य तो गिरे नहीं, इस प्रकार हम रखे ऐसा नहीं, शिष्य गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, शिष्य गिर भी जाए ऊपर दांत लगा, ऊपर डांट लगा दी, शिष्य बुड़क गए, बुड़क नहीं देंगे। भीतर का माल जो का क्यों रहेगा, उसका समाल जो है वह डांट करते, तो डांट से बहुत कीमती वस्तु रह गई। उसी प्रकार शिष्य में भी भगवत कुछ माल भर देते हैं, लेकिन ऊपर से यदि डांट और नहीं लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। डांट आवश्यक है। अब देखो, ध्यान रखना, होशियारी की बात देखो, यदि शीशी के भीतर की वस्तु का उपयोग करना है, बार बार खोलना है, तो डांट लगाते समय सावधान रहना है, नहीं समझे? डांट लगाते समय सावधान ही रहना, नहीं तो डांट भी भीतर चली जाए। डांट कभी कभी भीतर चली जाती है और शीशी का कंठ छोटा रहता है, जो इस दवाई को हम यूं कर देते हैं तो वह कंठ के पास पुनः वह डांट आ जाती है, तो भीतर का भीतर ही बाहर का बाहर रह जाता है, स्थिति ये हो जाती है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ एक बार ऐसा हुआ था अपने जीवन में, घटना घटी थी, उस सुई के द्वारा बिल्कुल भीतर ही डांट चली गई थी, यूं सुई के माध्यम से यूं कर देता, लेकिन जैसे जैसे डांट भीतर चले जा, ऊपर ऊपर वह डांट के लिए कुछ छिलके कोर तो निकल जा, लेकिन नीचे नीचे वह डांट चली जाती है। तो बहुत कोशिश के साथ श्वास प्राणायाम करके उस डांट को निकाला था, फिर बाद में सोचा भैया इसको डांट अच्छे ढंग से कह डाले, उस डांट के ऊपर थोड़े से जो कागज और चिपका दिया दो तीन राउंड, फिर बाद में उस डांट को यूं करके थोड़ा सा यूं दबा दिए, ज्यादा नहीं दबाया, ऐसा नहीं दबा दिया आपने जैसे अंगूठा छाप करके, नहीं दबाना। उसी प्रकार शिष्य के द्वारा यदि काम लेना चाहते हो, परंपरा चलाना चाहते तो उसको ऐसे डांट हुआ बार बार कह दे कि हाँ और एक डांट दे दो, और एक बार डांट दे, ताकि वह काम चल जाए। तो इसी प्रकार हमें मान को, माया को, क्रोध को मिटाना है और अपनी सीमा के बाहर निकालना है, तभी कहीं जाकर के हमारा स्वभाव बाहर की ओर आ सकता है और अनंत सुख का भाजन यह आत्मा बन सकते। महा